राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा। तो श्रीमान नृत्य गोपाल तुमाल प्रभु जी के घर पे आज शाम को 14 का दिन है। कल गौर पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन है। आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है, इनका धन्यवाद करते हैं कि महत्वपूर्ण कल जो बलराम पूर्णिमा का दिन है उससे पहले रात को हम बैठ के श्रीमद् भागवत से हरि कथा कृष्ण कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। वसुदेव का एक नाम है अनंक दुम दुभी, उसका अर्थ है वसुदेव का जब जन्म हुआ था तो देवताओं के जो इंस्ट्रूमेंट है दुम दुभी और बाजे अपने आप बज गए थे। तो वसुदेव को उनकी माता ने बताया था कि तेरे जन्म के समय देवताओं ने बड़े हर्ष से शौक से खुशी से बड़े ढोल मृदंग दुमदुबियां बजाई थी कि ये आगे चल के भगवान के अवतार को धारण करेगा अथवा भगवान के पिता की वात्सल्य सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो वासुदेव को ये बात मालूम थी, उसकी मां ने बताया था। उसका एक नाम भागवत में अनंक दुमदुभी है। अनंक बाजे को कहते हैं, दुमदुभी भी बाजे को कहते हैं। जो देवताओं के बाजे हैं वो बजाते हैं जब आनंद में मगन होते हैं, कोई दिव्य भगवान के लीला का दर्शन करते हैं। तो और जब विवाह हुआ देवकी और वसुदेव का तो वसुदेव ने देवकी को ये समाचार सुनाया कि ऐसे मेरी मां ने कहा था कि हमारे यहां भगवान बालक के रूप में प्रकट होंगे। तो जब विवाह के बाद कंस जो देवकी के चाचे का लड़का भाई था, कजन ब्रदर था, कंस है उग्रसेन का बेटा और देवकी है देवक की बेटी, देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं। वैसे कंस नाम में तो उग्रसेन का बेटा है लेकिन असल में कालनेमी नाम का असुर है। कालनेमी नाम का असुर है और वो कंस के रूप में प्रकट हुआ है। और ये भी अन्य पुराणों में कथा है कि पद्मावती उग्रसेन की पत्नी का नाम है, वो विदर्भ देश की थी, मथुरा से अपने माता पिता के घर गई थी। ये जो महीना चल रहा है ना श्रावण का महीना, इसमें यहां तो नहीं है, भारत में ये नियम है कि विवाहित लड़कियां अपने ससुराल से अपने मां बाप के घर जाती हैं, भाई उनको लेने आता है और श्रावण के महीने में वो अपने माता पिता के घर में जाते हैं जहां झूला होता है। और ये झूलन यात्रा का दिन है, भगवान श्री राधा गोविंद का झूला यात्रा एकादशी से शुरू हुआ, कल पूर्णिमा तक चलेगा सब मंदिरों में। यहां नहीं आपको देखने को मिलता है, भारत में इन दिनों में बड़ा उत्सव होता है। नवविवाहित लड़कियां अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर में आती है और झूले घर में होते हैं और बड़े उत्सव होते हैं उनके, श्रावण के व्रत रखते हैं और तो हरियाली हरियाली होती है चारों ओर, क्योंकि बरसात का मौसम है, ग्रीन ग्रीन होता है। तो एक हरियाली तीज, तीज का मतलब तीसरा दिन, अभी आज 14 दिन है ना, तो ऐसे तीसरा दिन एक कम दो दो दूज फिर तीज चौथ पंचम, जैसे ये चतुर्दशी आज तो तीसरा दिन होता है ना, बहुत बड़ा एक उत्सव होता है वृंदावन में। तो इतना बड़ा झूलन यात्रा का हरियाली तीज का उत्सव होता है, तो रिक्शा भी नहीं चलता है, जो साइकिल रिक्शा है वो भी नहीं चलता है, पैदल आदमी भी चलते हैं। तो एक आदमी के साथ एक आदमी मानो के हमारे इस्कान मंदिर से लेके और वहां के बिहारी मंदिर तक, अब समझो कि तिल कहीं डालो तो एक तिल डालने जितनी जगह नहीं होते, इतने आदमी होते। और भगवान को सोने के झूले में, सोने का झूला है उसमें, झूलन में झूला, झूलन यात्रा, चांदी का झूला, सोने का झूला, फूलों का झूला, तो भगवान का ये झूलन यात्रा विशेष गर्मी के दिन होते हैं। बरसात के कारण से हवा जो होती है एयर थिक हो जाती है, ह्यूमिड हो जाती है, तो एक झूलन यात्रा का उत्सव भगवान का कहीं कहीं तो तीज से चलता है पूर्णिमा तक, इसका मतलब कोई 14 दिन चलता है, 12 दिन चलता है, हमारे मंदिरों में 6 दिन चलता है, 11 से पूर्णिमा तक 5 से 6 दिन। तो उसमें स्वयं भगवान राधा गोविंद झूले में झूलते हैं, तो हवा लगती है और भक्त उसको झूलन को जाके झूलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बात यहाँ से ऐसे निकली कि ये प्रथा है कि विवाहित स्त्रियां अपने माता पिता के घर जाती हैं। तो पद्मावती अपने माता पिता के घर गई थी, सहेलियों के साथ घूम रही थी, तो ऊपर से जाते हुए कालनेमी राक्षस ने उसको देखा और वो उग्रसेन का रूप धारण करके नीचे उतर आया। और तब सहेलियों ने कहा कि पति आया होगा इसका, उग्रसेन आया है। तो वो पति के साथ जब गई तो उसने बाद में देखा ये तो मेरा पति नहीं है। तो कालनेमी उस वक्त अपने अंश को कंस के रूप में स्थापित किया पद्मावती, उस ने बाद में कंस को जन्म दिया। तो कंस कालनेमी असुर है, पहले एक बात याद कीजिए। तो जब कंस अपनी बहन के रथ के घोड़े को सारथी बन के ले जा रहा था देवकी और वसुदेव को, तो देवताओं ने आकाशवाणी की। देवताओं ने क्यों आकाशवाणी की कि इसका 8वां गर्भ, पुत्र नहीं बोला, पुत्री नहीं बोली शास्त्र में, इसका 8वां गर्भ बोला। तो इसलिए लड़की को देख के कंस ने ये नहीं कहा कि ये लड़का है कि लड़की है, क्योंकि आकाशवाणी ने गर्भ कहा था, 8वां गर्भ तुम्हारा मौत है। तो कंस जो हाथ से, एक हाथ से घोड़े की लगाम और एक हाथ से वो जो विप लेके जा रहा था चाबुक, वो दोनों छोड़ दिए। लगाम वाले हाथ से देवकी के केस पकड़े और विप वाले हाथ से तलवार निकाल ली और देवकी को मारने लगा। लेकिन देवकी बहुत खुश हो रही थी, क्यों? बोले देवता कह रहे हैं वसुदेव ने मुझे कहा है कि हमारे घर में भगवान अवतार लेंगे, तो देवता यही तो कह रहे हैं कि इसका 8वां पुत्र कंस को मारेगा, इसका मतलब ये आकाशवाणी हमारे सौभाग्य की है। देवकी के हृदय में हर्ष होने लगा। और देवताओं ने ये ऐसे आकाशवाणी क्यों कर दी? देवताओं ने देखा ये कंस इतना प्रेम से यशोदा की, सॉरी देवकी की और वसुदेव की सेवा करेगा, तो कल कृष्ण इनको मारने में हिचकिचाएगा। बोला ये तो मेरी माता पिता की सेवा की थी, तो इसको मारेगा नहीं, और फिर देर हो जाएगी कृष्ण के अवतार होने में, इसलिए अभी से देवकी और वसुदेव को देख लेना चाहिए कि कंस कैसा है, उसका असली रूप दिखा दिया जाए। क्योंकि बहुत से लोग अच्छे दिखते हैं जब तक उनके भोग के ऊपर कोई रुकावट नहीं पड़ती है। कामी और लोभी के रास्ते में रुकावट बनोगे तो उसका असुरी स्वभाव एकदम प्रकट हो जाएगा। तो ये कंस को देवता दिखाना चाहते थे, देवकी और वसुदेव को, कि ये तुमसे स्नेह प्रेम नहीं करता। जो भी हो, देवकी शांत है और खुश भी है, और एक दृष्टि से मृत्यु सामने है लेकिन भयभीत नहीं है। तो ऐसे जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके संकट में भी संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, वो भगवान को धारण करने के अधिकारी होते हैं। उसने न चिल्लाया कंस को, कहा कि भाई मेरी रक्षा, मेरे को मत मारो, न ही वसुदेव को कहा कि मेरी रक्षा करो। अभी तो विवाह हुआ था, वसुदेव को इतना रिलेशन भी नहीं था, कभी कहे कि मेरी रक्षा करो। लेकिन वसुदेव ने अपने धर्म को निभाना चाहा कि मेरा धर्म है पत्नी की रक्षा करना, ये पति का धर्म है। ये भागवत में 5वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र का जो जीवन का लक्ष्य है, एक श्लोक में हनुमान जी जो भगवान राम के उपासक हैं, जो आज भी एक वर्ष है, जैसे भारत वर्ष है, ऐसे एक वर्ष है किम पुरुष वर्ष। उस किम पुरुष वर्ष में राम जी की उपासना हनुमान जी आज भी करते हैं, और वो पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवत में उस वर्ष का वर्णन है, और वहां हनुमान जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसमें भगवान राम के जीवन का उद्देश्य, अवतार के उद्देश्य में एक बात लिखी है, आधी बात मैं करूंगा, पूरी नहीं करूंगा। आधी बात यह है कि एक बार जीवन में पत्नी का हाथ ग्रहण किया जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा के लिए समुद्र पार जाना पड़े, रावण जैसे किसी बहुत बड़े राक्षस से लड़ना पड़े तो भी लड़के पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये राम जी की शिक्षाओं का मूल और मुख्य उद्देश्य भागवत में रामायण के मर्यादा का दिया गया है पांचवें स्कंद में, कि एक बार पत्नी को ग्रहण करे तो उसकी रक्षा करने का धर्म है, और जान की बाजी लगाकर रावण से लड़ने तक के लिए तैयार होकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने जैसा मुश्किल काम है वो भी करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वसुदेव शास्त्र को जानता था, ये सब शास्त्र राम कथा पहले से थी, वसुदेव के प्रकट से पहले ये कथा राम कथा थी, ऐसे भागवत में लिखा है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हम आप राम कथा से पहले ही अवगत हैं, जानते हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में पांच अध्यायों में बता रहा हूं, जबकि रामायण वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे हैं, भागवत में तो 18,000 श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है। तो इतना बड़ा विशाल शास्त्र रामायण है तो आप उसको पहले जानते हैं। तो पत्नी की रक्षा करना ये पहला धर्म है, हर हालत में अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो दूसरा क्या लिखा हुआ है वो यहां कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरा उसका भाग राम जी का ये, अगर इतनी रक्षा करने की हिम्मत नहीं है तो पत्नी को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा मुश्किल आएगी। दूसरा पार्ट इसका है कि हमेशा जब ग्रस्त में जाओगे तो समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, झगड़े होंगे, मुश्किल समय आएगा, इसलिए ग्रस्त में प्रवेश ही मत करो। और अगर प्रवेश करना है तो पत्नी की रक्षा करना आपका पहला धर्म है, और हर हालत में करनी। ये दो बातें हैं बड़ी अद्भुत भागवत में हनुमान जी के द्वारा पूजा के श्लोकों में राम की पूजा की है। पत्नी ग्रहण मत करो अगर तुम उसको संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, समस्या आएगी। वैसे जो मंत्र पढ़ते हैं वेदों की शादी में, उसमें पत्नी को लक्ष्मी के स्थान के ऊपर मंत्र पढ़ते हैं, और लड़के के मंत्र जो पढ़ते हैं विष्णु की पूजा के मंत्र पढ़ते हैं, असल में कि उस पूजा से उसको ग्रहण करते हैं। और अभी भी आपके यहां तो नहीं मैंने देखा है, लेकिन हमारे भारत की पुराने पूर्वज की संस्कृति ये है कि लड़का जब शादी करके घर में आता है तो घर में बहन आने नहीं देती है, दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाएगी, कहेगी कहां गया था, कहां से आ रहे हो, तो वो कहेगा क्या लाए हो, तो वो कहेगा लक्ष्मी को लाया हूं, वो कहेगा लक्ष्मी को लाया हूं, लक्ष्मी को लेने गया था। और तब बहन और लड़के की मां वो थाली में लाल कुंकम का पानी उसको भिगा के दरवाजे के ऊपर रखेगी, और जैसे वो नवविवाहित लड़की घर में आएगी वो उस पानी के अंदर पांव रखेगी, फिर उसके पांव के निशान लाल लाल, लक्ष्मी के पांव लाल निशान होते हैं, वो घर के अंदर लाल निशान पूरे के द्वारा उसका प्रवेश होता है कि लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही है। ये अभी तक भी विधि वहां की जाती है, यहाँ तो इतनी इतनी लंबी ईडी वाले सैंडल होता है, उसको कहाँ लक्ष्मी के पांव में लगाएंगे। यहाँ तो लेकिन ये पुरानी जो अभी भी हमारे घरों में ये मर्यादा है, तो जिसको लक्ष्मी का स्थान देके घर में लाते हैं उसका पालन पोषण करना, उसकी सुरक्षा करना ये हमारा धर्म है। किसी भी अवस्था में उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और मनुस्मृति ने लिखा है, जहां नारी का अपमान होता है वो शमशान के समान है, वहां कभी कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। जो कहने का तात्पर्य बात तो हम कर रहे थे जो वहां जा रहे हैं, लेकिन ये बीच में आई है तो समाज की शिक्षा की बातें हैं। और हर परिस्थिति में रामायण की ये बड़ी अद्भुत शिक्षा है कि नारी की रक्षा परम धर्म है और उसको हर हालत में करना चाहिए। तो पद्मावती वहां पति से अलग थी और श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, तो काल ने मैंने उग्रसेन के रूप धारण करके उतर के और उसके अंदर अपना अंश स्थापित कर दिया। और जब पहचाना तो पद्मावती ने कहा, तुम मूर्ख, तुमने हमारा सत्य क्यों भंग किया, हमारे पतिव्रता धर्म का तुमने। तो इसमें बहुत बड़ा वार्तालाप लिखा है कि तुम जब अपने पति के घर में नहीं हो, जब तुम्हारा पति यहां नहीं है, तो तुम श्रृंगार करके यहां क्यों घूम रही है सहेलियों के साथ, ये भी तो धर्म का नियम नहीं है। जब पति घर में नहीं है तो श्रृंगार करके घूमना नहीं चाहिए। श्रृंगार किसको दिखाने के लिए करना चाहिए? पति को दिखाने के लिए। अब पति घर में, अब समस्या यह है कि पति को दिखाने के लिए तो श्रृंगार कोई नहीं करता है, पब्लिक को दिखाने के लिए सब श्रृंगार करके जाते हैं। दूसरे की शादी में सज धज के जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, अपने घर में अपने पति के लिए जो भी वस्त्र आभूषण है वो पति की प्रशंसा के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। इतना उल्टा धर्म चल पड़ा है। घर में तो वो लंबा भूत जैसा कपड़ा पहनते हैं जिसमें भूत नहीं होते थे पहले, और बाहर सब सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के जाएंगे, तो ये कोई धर्म है? निशान क्या सोच रहा है? ये तो धर्म नहीं हुआ ना। हाँ, क्या कर सोच रहा है? रक्षा करनी पड़ेगी। अब दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। जो भी है, वसुदेव ने अपना धर्म निभाने के लिए कंस से शाम दाम दंड भेद, ये चार राजनीति है। पहले प्रलोभन देना, अपना संबंध स्थापित करना, उसकी प्रशंसा करना, तुम भोज वंश के हो, तुम्हारा नाम है, तुम्हारी कीर्ति है, और फिर ये तुम्हारी बहन है, ये संबंध स्थापित किया। फिर कहा कि तुम्हारा नाम इतना बड़ा है, फिर भेद डाला कि तुम्हारी बहन है, तो अब तो डबल माइंड हो गया कि मैं इसको मारूं कि न मारूं। और फिर मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है जो स्त्री की हत्या करता है, और वैसे मौत किसको नहीं आएगा, आज नहीं तो कल आना ही है, तो कौन मौत से तो कोई बच नहीं सकता है। बहुत से सभी प्रकार से, लॉजिक से, नेम से, राजनीति से कंस को समझाया, कंस नहीं समझा। तब वासुदेव ने कहा कि कैसे भी इस वक्त देवकी की रक्षा करनी चाहिए। तब एक श्लोक लिखा है भागवत में कि मृत्यु को टालने के लिए जब तक हमारे अंदर शक्ति हो और शांत दम हो, तब उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु को टालने के लिए जब तक दम है तब तक, मानो ऐसे चाणक्य की नीति है कि बीमारी हो तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, इतनी बढ़ जाए कि फिर उसको निकालना मुश्किल हो। और आग हो तो जल्दी बुझाना चाहिए, बढ़ गई तो बुझेगी नहीं। और किसी से कर्ज लिया है, किसी से लोन लिया है, तो जल्दी उतारो, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा, उतारना मुश्किल हो जाएगा। ये तीन चार चीजें हैं, उनको तुरंत करना चाहिए। तो मृत्यु अगर सर के ऊपर हो तो बचाने के लिए जितना शक्ति है, जितनी बुद्धि है, बल है, उस सारे का प्रयोग करना चाहिए। तो वसुदेव ने देखा, बल से तो मैं कंस से युद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग तो कर सकता हूं, मुझे कैसे भी देवकी। तब उसके मन में ये विचार आया कि इसको भय तो देवकी से नहीं है, देवकी के बच्चों से है ना, तो मैं देवकी के बच्चे इसको दे दूंगा, ये उसके वचन कर लूं। तब मन में आया कि अपने बच्चे किसी को देना और जो मार दे, तो बड़ा भयानक काम है। और फिर भगवान ने कहा है, आकाशवाणी कह रही है कि भगवान मेरे घर में प्रकट होंगे और कंस को मारेंगे, उसको मैं दे दूंगा, ये कैसे हो सकता है। और फिर अपने मन में वसुदेव कहता है, हो सकता है बच्चे पैदा होने से पहले ही कंस मर जाए, ये भी तो हो सकता है, कोई आदमी कब मरेगा ये पता तो नहीं। और फिर हो सकता है मुझे लड़का हो ही ना, और भविष्य को किसने देखा है, इस वक्त तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। और तब कंस ने, तब वसुदेव ने भयभीत अंदर से था लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, कंस भाई तुम्हें देवकी से तो भय नहीं है ना, इसके बच्चों से भय है ना, इसके संतान से भय है ना, मैं वसुदेव तुमको वचन देता हूं। ऐसा श्लोक इतना सुंदर संस्कृत में लिखा है कि इसके सारे बच्चे जिनसे तुम्हें भय नहीं है वो दे दूंगा, जिससे भय है वो नहीं दूंगा, इसका अर्थ ये निकलता है संस्कृत में कि इसके जितने बच्चे जिनसे तुम्हें भय है, भय नहीं है, अब भय जिससे तुम्हें भय नहीं है वो तुम्हें दे दूंगा। इसको क्यों मारते हो, इसके बच्चों से तुम्हें डरने, इससे तो खतरा नहीं है ना, तो इसको। और कंस इस बात के ऊपर विश्वास किया कि वसुदेव जो कहता है वो सत्य है, वसुदेव देव तुम जाओ, और कंस वहां से चला गया, वो अपना रथ खुद चला के घर गए। अब तो कंस आगे नहीं गया इसके बाद, बात ऐसा स्थिति हो गई। कीर्ति नाम का पहला बच्चा एक साल के बाद देवकी और वसुदेव के वहां जन्म लिया। तो अब अपने बच्चे को कंस को देने जाना है जो मारेगा, और वहां लिखा है कि साधु, जो साधु पुरुष होता है वो अपने वचन को निभाने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता है, और क्रूर व्यक्ति कंस जैसा कोई भी गलत काम करने में पीछे नहीं हट सकता है। तो वसुदेव ने कहा, मैं साधु हूं, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, और वैसे भी आठवें बच्चा भगवान आएगा मेरे घर में, और तब तक इन बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके आने के लिए। सो निर्णय करके उस बच्चे को उठाया हाथ में देव को वसुदेव ने, और अभी अपने घर से कंस को जाके दिया। कंस ने देखा ये तो बच्चा छोटा सा है, और मन में आया कि इससे तो मुझे भय नहीं है, मुझे आठवें से भय है, इसको मैं नहीं मारूंगा, ले जाओ। वसुदेव सोचा कि कंस के ऊपर विश्वास तो नहीं किया जाता, लेकिन कहता है ले जाओ तो ले जाओ। जब वापस ले जाने लगा तो एक श्लोक है भागवत में जो सुखदेव बोलते हैं, लेकिन असल में वो नारद का बोला हुआ श्लोक है, और नारद उतर के नीचे आए, कंस के घर में आए। अब नारद ने कहा, देवताओं के जो उद्देश्य है उसमें देर हो जाएगी अगर कंस दयालु हो जाएगा तो। कंस को दयालु नहीं होना चाहिए, भगवान के आने में देर होगी, भगवान की लीला को देखने में देर हो जाएगी, और कंस अगर धर्म के ऊपर उतर आएगा तो भगवान के आने में देर हो जाएगी, क्या करना चाहिए। नारद के आते हुए देखे कंस ने तो प्रणाम किया। नारद ने कहा, भोजराज आप को मालूम है मैं स्वर्ग से आ रहा हूं, सारे देवता यदुवंश में जाके जन्म ले रहे हैं, और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, ये विष्णु तुम्हारे को मारेगा। वैसे तुमको तो मालूम है पहले भी लास्ट जन्म में तुमको विष्णु ने मारा था, कालनेमी तुम हो, तुमको विष्णु ने मारा था, और विष्णु बहुत छल करता है, तुम्हें मालूम नहीं है, ये पहला भी हो सकता है विष्णु, आठवां भी हो सकता है, वो कभी भी आ सकता है, तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे तो तुम्हारे से विश्वासघात हो जाएगा। सुन लो, ये देखो मेरी उंगलियां पड़ी है, गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला अभी इधर से गिनना शुरू करो, बोला 1 2 3 4, बोला बोला कौन सा 8 है, ये 8 है कि ये 8 है, तो कमल दल के इसके पट पकड़ियां गिनो कौन सी पहली है कौन सी आठवीं, पता तो नहीं है, तो विष्णु कभी भी आ सकता है। कंस का माथा घूम गया और नारद चल गया। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाला और उस बच्चे को लेके पत्थर के ऊपर मारा, और उसके बाद हर साल एक बच्चे को जन्म दिया देवकी ने, और जेल के अंदर कंस ने हर एक बच्चे को पत्थर के ऊपर आंखों के सामने पटक के मारा। 6 बच्चे ऐसे कंस ने मारे। उसके बाद का लिखा है, ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सप्तमो वैष्णवम धाम
यम अनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन।
सातवां जो देवकी के गर्भ में आया वो कौन था? वैष्णव धाम। यह शब्द है, आगे से श्लोक चल रहा है, ये तो दूसरा है, दो श्लोक हैं। एक एतम, तो एक एक साल के बाद छह बच्चों को देवकी ने जन्म दिया और सबको कंस ने मारा, और सातवां बच्चा, तो यह शब्द है सप्तम, सातवां वैष्णव, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु। धाम, धाम का मतलब भगवान का अंश, भगवान का एक्सपेंशन। सातवां भगवान का एक्सपेंशन, उसको क्या कहते हैं? तो शब्द लिखा है अनंतम, उसको अनंत कहते हैं, भगवान अनंत देव कहते हैं जिसको। कहां आया? देवकी के गर्भ में आया। और जब देवकी के गर्भ में ये सातवां बालक आया तो देवकी को हर्ष होने लगा, खुश होने लगी कि ये सामान्य बच्चा नहीं लगता है। पहले छह बच्चे भी आए थे लेकिन तब हर्ष नहीं हुआ, और फिर थोड़ा सा भय लगने लगा कि छह की तरह कंस इसको मारेगा तो नहीं। तो अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जो छह बच्चे पहले देवकी के गर्भ में आए वो कौन थे और उनको कंस ने क्यों मारा? नित्यानंद चरित पुस्तक है, उसमें एक प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण जो चेतना महाप्रभु को तो बहुत मानता था लेकिन नित्यानंद के ऊपर थोड़ा उसको संदेह था कि ये तो संन्यास का वेश धार के अवधूत है लेकिन रेशमी कपड़े पहनता है, पान चबाता है और उसके अंदर दोष दिखते हैं। तो वो चल के जगन्नाथपुरी गया ब्राह्मण, और जाके चेतना महाप्रभु से पूछा कि मेरी एक शंका है, मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ये चेतन, ये नित्यानंद जो है, इसके व्यवहार से मुझे जरा उसमें दोष दिखते हैं, पान चबाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किसी का भी खा लेता है, तो नित्यानंद के ऊपर मुझे थोड़ा सा दोष लगता है। उस ब्राह्मण ने सत्य बोला तो चेतन महाप्रभु ने एक कथा बताई उसको, कहा किसी भी बड़े आदमी में, साधु महात्मा कोई हो, भगवान का कोई महान भक्त वैष्णव हो, तो उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। और चेतन महाप्रभु ने कहा ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, और वैसे ब्रह्मा हमारी संप्रदाय का प्रवर्तक है, हम ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्मा जी के मानसिक सात ऋषि हैं, 14 एक मनु है, नारद मानसिक पुत्र है नारद ब्रह्मा जी का, मन से उत्पन्न हुआ है, 4 कुमार नारद के ब्रह्मा जी के पुत्र है, एक लड़की ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न की, उसका नाम वाक था, और किसी कारण से उस लड़की के ऊपर काम आतुर होके ब्रह्मा उसके पीछे भागने लगा। उस वक्त मरीचि के 6 पुत्र जो देवता थे वो हंसने लगे कि अरे ब्रह्मा जी देखो तो लड़की के पीछे भाग रहा है। चेतना महाप्रभु कहते हैं उस दोष के कारण उन 6 मरीचि के बच्चों को श्राप दिया गया कि तुम असुर बनो, तुम असुर जोनी में चले जाओ। वो 6 मरीचि के बच्चे हिरण्याकश के पोते असुर बने, और वो तपस्या जब करने लगे तो हिरण्याकश ने क्रोध किया कि तुम स्वतंत्र तपस्या करके बल ग्रहण करके क्या करना चाहते हो, तुम अपने पिता के द्वारा हाथों मारे जाओगे। और काल नेमी के वो पुत्र थे 6, और वो शराब के कारण आज देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और काल नेमी उनका ही पिता था जिनके हाथों वो मारे गए। इसको षड गर्भासुर बोलते हैं, षड गर्भासुर, 6 गर्भ असुर थे जो ब्रह्मा जी के शराब से असुर बने थे और हिरण्याकश्यप ने कहा था तुम्हारे पिता के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए काल नेमी उनका पिता था जिनके हाथों उनकी मृत्यु हुई। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उस ब्राह्मण को कहा तो ऐसे किसी में दोष देखने से इतने बड़े देवता भी असुर योनि में जाते हैं, इसलिए नित्यानंद कोई मुझे कहे कि हाथ में शराब लेके वैश्या के साथ घूमता है तो भी मैं नित्यानंद को मानता हूं कि वो परम आदरणीय है, परम पूजनीय है, उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो कुछ भी करता है लेकिन वो अपने आप में स्वयं भगवान है और आपको दोष उसमें नहीं देखना चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव लिखते हैं कि ये मन जो हमारा है ना, मरीचि मन का प्रतीक है और मन में 6 दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 दोष जो मन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 असुर हैं, मन के दोष हैं। देवी देव की भक्ति है, भक्ति रूपा है। कंस भय है, कंस फियर पर्सोनिफाइड है, देव की भक्ति है। और कंस के भय से, देवकी के हृदय से जब ये 6 मन के दोष षड गर्भासुर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप में नाश हुए तो फिर देवकी का हृदय पवित्र हुआ। तो भक्त के हृदय में ये दोष जो होते हैं मन के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर का मतलब एनवी, मद का मतलब अहंकार, ये फॉल्स ईगो, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये दोष जब तक नाश नहीं होते तब तक भगवान का अवतार भक्त के हृदय में नहीं होता। तो पहले ये दोष साफ करने होते हैं। इसलिए भौतिक जगत में हमेशा भयभीत होना, भय से भय रखना चाहिए कि ये दोष कभी भी हमारा भगवान के मिलने में रुकावट डाल सकते हैं। और तब जब ये 6 गर्भ, ये 6 दोष निवारण हो गया तो उस गर्भ में भगवान के आने के लिए सप्तमो गर्भ वैष्णवम धाम, भगवान विष्णु का पहला विस्तार, भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी प्रवेश किया। बलराम जी क्यों आए तो उसके लिए दूसरे श्लोक में लिखा है कि बलराम वैसे रोहिणी का नित्य पुत्र है, बलराम रोहिणी का पुत्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है कि वो जाए देवकी के गर्भ में, मेरे लिए आसन बनाए जिसके ऊपर मैं जाऊंगा। भगवान किसके ऊपर आराम करते हैं? शेष के ऊपर। भगवान के लिए बैठने के लिए क्या जगह है? शेष। तो बलराम जी देवकी के गर्भ में आए और अपने अंश शेष को वहां छोड़ के गए, जो भगवान का बेड है जिसके ऊपर भगवान शयन करते हैं शेष के। आगे आप देखेंगे कि जब वसुदेव कृष्ण को ले जा रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है तो ऊपर से शेष कृष्ण के ऊपर छाया करता है, तो वो शेष तो पहले से ही बलराम जी कृष्ण के साथ गर्भ में स्थापित करके गए थे। तो शेष बलराम जी का एक एक्सपेंशन है जो भगवान श्री कृष्ण के आसन, बेड, सारे पेराफेरनलिया बनाता है, धाम बनाता है। तो यहां अब श्री कृष्ण भगवान ने बलराम के आने के ऊपर देवकी के गर्भ में, इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, ये कौन थे 6 चिल्ड्रन लिखा है? दी 6 चिल्ड्रन killed by a kans had formerly been son of Marichi, but because of having been cursed by the Brahman, they were obliged to take birth as the grandsons of Hiranyakashipu. Ye sab isme likha hai. Kans had taken birth as a Kalnemi and now he was obliged to kill his own sons. तो ये लिखा है. फिर एक अब ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं. भगवान कहां ये श्लोक कृष्ण बोल रहे हैं? गोलोक धाम में बैठे हुए हैं. और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान अपि विश्व आत्मा. सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान जो विश्व आत्मा में, विश्व आत्मा में का मतलब होता है सबका मालिक और सबसे प्रेम करने वाला विश्व आत्मा जगन्नाथ. भगवान अपि विश्व आत्मा, जो भगवान विश्व आत्मा श्री कृष्ण है, विदित्वा कंस जम भयम, जान लिया के कंस ने भयभीत कर दिया है किसको? सारे यदुवंश को. अंधक, भोज, मधु ये जो वंश थे, ये सारे कंस के भय से मथुरा छोड़ के, मथुरा मंडल पूरा छोड़ के, सोरीपुर स्थान छोड़ के, कोई विदर्भ गया, कोई पांचाल गया, कोई और जगहों पे रहने लगे. बहुत कम लोग वो कंस के पास रहने लगे, जैसे अक्रूर रह गया. तो ऐसे उनको भयभीत देखकर भगवान ने क्या किया? श्री कृष्ण ने यदुनाम निज नाथानाम, जब देखा कि कंस के भय से, वो तो मैं सबका भगवान, तो सबका नाथ है, जगन्नाथ है, लेकिन विशेष रूप से अब तो यदुनाथ होके आने वाला है, यदुपति बन के आने वाला है, और यादव भयभीत है. इसलिए भगवान ने एक काम किया. क्या काम किया? योग मायाम समादिशत, योग माया को सम्यक रूप से बुला के आदेश दिया. आदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया. और योग माया को कहां बुलाया? अपने निज धाम में. और योग माया को बुला के क्या बोला? योग माया को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम. देवी तुम गोकुल में जाओ. कौन सा गोकुल? ब्रज जिसको कहते हैं वृंदावन गोकुल, ब्रजमंडल में जाओ. उसकी पहचान क्या है? बोला उधर गोप है, गायें हैं, गाय हैं, गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, और वो पहले से ग्वालों और गोपों से अलंकृत है, सुंदर है, उसको जाके आप अति सुंदर बनाओ. और फिर कहती है वहां कौन है? रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले. उस नंद के गोकुल में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी रह रही है, और अन्य वसुदेव की पत्नियां भी वहां गुप्त रूप से रह रही है. ये दूसरा लिखा है. अन्यश्च, और भी, एक रोहिणी और भी वसुदेव की पत्नी वहां गुप्त रूप से रह रही है नंद गोकुल में. च कंस संविघ्ना विवर्जेषु विशंति. तो कंस के भय से सब लोग वहां रह रहे हैं, आप वहां जाकर उनको भय से मुक्त करो. कौन भय से मुक्त करेगा? तब भगवान आगे कहते हैं, देवक्या जठुड़े गर्भम शंखाख्याम धाम मामिकम. और कहते हैं देवी, इस वक्त तो देवी ने मानो पूछा कि मैं उधर जाके कैसे रक्षा करूंगी, मैं उधर जाके ब्रज में गोकुल में रोहिणी जहां है, वसुदेव की पत्नी, अन्य पत्नियां हैं, वहां मैं कैसे जाके रक्षा करूं? तो भगवान ने कहा, इस वक्त देवकी के जठड़े का मतलब उनके पेट में कौन है? संकर्षण जिसको कहते हैं, जो मेरा अंश है, मेरा धाम है, वो इस वक्त देवकी के गर्भ में है. देवी ने कहा मैं क्या करूं? बोला संकृष्य रोहिण्याम उदरे सनिवेशय. उसको वहां से आकर्षण करके देवकी घर के गर्भ से निकालकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो. ये भगवान ने योग माया को आदेश दिया. यहां इसके भावार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक भाव, कि कभी कभी लोग ये प्रश्न कहते हैं कि देवकी, आगे लिखा है देव रूपेणी है, देवकी साक्षात विष्णु रूपेणी है. वो तो विष्णु को उसी के उदर में आएगा जो वैसे ही होगा, विष्णु रूपेणी, देव रूपेणी देवकी है. तो फिर उसके गर्भ में छह असुर कैसे आए, और छह असुरों के बाद बलराम जी उसके गर्भ में कैसे आए, फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे आए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसका एंसवर देते हुए स्वयं प्रश्न करते हैं, फिर एंसवर देते हैं कि कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है इस दुनिया में, और सब जगह भगवान है लेकिन सब कुछ फिर भी भगवान नहीं है। इन नवे अध्याय भगवद गीता के दो श्लोकों को कोट करके प्रभुपाद जी कहते हैं, सो देवकी के गर्भ में असुर आनु से देवकी के गर्भ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपने सांप से आए थे और देवकी के गर्भ में आने से उनका उद्धार हुआ, नहीं तो उनका उद्धार नहीं हो सकता था। हम जब द्वारका लीला पढ़ेंगे तो एक दिन देवकी कृष्ण और बलराम को कहती है द्वारका में, पुत्रो मैंने सुना है कि जब आप मथुरा से उज्जैन में गए थे अवंती का नगरी में, तो आपके गुरुदेव सांदीपनि मणि का बेटा बहुत साल पहले मर गया था और आपने गुरु दक्षिणा में उस बेटे को जीवित लाके दिया। मैं आपकी मां हूं, मेरे सामने मेरे 6 बेटे कंस ने मारे थे, मैंने उनको जी भर के देखा भी नहीं, दूध भी नहीं पिलाया था, मेरी इच्छा उन बच्चों को देखने की है। तो कृष्ण और बलराम द्वारका से सूतल लोक में गए, सूतल लोक में बलि महाराज रहता है, बलि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का स्वागत किया और पूछा मैं क्या सेवा करूं। बोला इस वक्त आपके यहां 6 बच्चे रह रहे हैं जो हम ले जाएंगे, हमारी मां उनको देखना चाहती। तो वो बच्चे बलि महाराज, ये सारा बलि प्रहलाद का पोता, प्रहलाद विरोचन बलि और प्रहलाद का पिता हिरण्याकश, तो इसी कुल के अंदर ये 6 बच्चे पैदा हुए थे, तो ये अभी बलि के पास रह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के मांगने के ऊपर बलि महाराज ने वो 6 बच्चे श्री कृष्ण को दिए। 6 बच्चों को कृष्ण जब द्वारका में लाए, माँ देवकी ने उनको देखा तो माँ देवकी के स्तन में दूध आया और माँ ने उनको दूध पिलाया, और जो दूध कृष्ण ने एक बार माँ का पान किया था वो प्रसाद उनको मिला, तब उनके उद्धार हुआ, वो जो असुर योनि से मुक्त हुए वापस जाके देवता के स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। ये ऐसे कथा आगे चेतना महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बताई थी कि ऐसे दोष के कारण उनको असुर होना पड़ा, इसलिए नित्यानंद में दोष मत देखना, और ये भागवत में आगे आएगी ये कथा। तो अब बलराम जी के आना इसलिए आवश्यक था देवकी के गर्भ में के शेष को वहां स्थापित करे, कृष्ण के लिए आने के लिए स्थान बनाए। अभी भी हम देखें यहाँ कोई महाराज आता है, गुरुजी आते हैं, तो जहां जहां प्रोग्राम होता है हम उनका आसन साथ ले जाते हैं, पहले आसन बनाते हैं तब आके वो बैठते हैं, उनके पानी का गिलास ले जाते हैं, उनका सारा सामान साथ ले जाते हैं, देखा बर्तन उनके होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनकी सेवा में जो भी चीजें लगती हैं वो सब बलराम जी का एक्सपेंशन है, बलराम जी का विस्तार है, उनका बिस्तर, उनकी घंटी, उनका थाली, उसका लोटा, उसका मटका, जो कुछ भी कृष्ण उपयोग में लेते हैं वो शांत रूप में बलराम अपने आप को एक्सपेंड करके कृष्ण की सेवा के लिए सब चीजें बलराम बन जाता है। गोलोक धाम पूरा बलराम स्वयं है, बलराम अपने आप को एक्सपेंड करके भगवान का धाम बनाते हैं, भगवान का आसन बनाते हैं, भगवान का बिस्तर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, भगवान के सब सामग्री जो भगवान की सेवा में लगती है वो बलराम जी का विस्तार है। तो बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा, वैसे हमारा धर्म क्या है, सबका जीव का धर्म क्या है, हमारा नेचुरल धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के सेवक हैं तो हमको सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमको सेवा करना कौन सिखाएगा, सेवा करने सिखाने के लिए भगवान से पहले भगवान का एक विस्तार बलराम जी आता है जो सेवक भगवान है, और जो हमको सेवा कैसे की जाती है वो सिखाता है। हमारा जो भगवान के साथ सेवा का संबंध है वो संबंध 5 रसों में है, प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु से, 5 रसों में हम भगवान की सेवा करते हैं। कौन से 5 रस हैं? कौन कौन से 5 रस हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और बलराम जी इन पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं और हमको सिखाते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए। वैसे शांत रस गोलोक में नहीं है भक्तों का, लेकिन बलराम जी शांत रस सारे पैरासरण लिए कृष्ण की सेवा के बनते हैं, वो शांत रस है। और दास रस में बलराम जी वैसे तो बड़े हैं कृष्ण से, और है तो केवल 7 दिन 8 दिन बड़े, बलराम पूर्णिमा है और फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में ऐसा है कि किसी किसी स्थान पे बलराम जी कहते हैं मेरे प्रभु की लीला है, दास भाव में आ जाते। जब ब्रह्मा ने बछड़े और ग्वाल बाल चुरा दिए और बलराम जी साथ नहीं थे, 1 साल के बाद जब सब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चतुर्भुज विष्णु रूप में देखा, तब श्री कृष्ण को सामने देखा और कहा कि ये तो मेरे प्रभु की माया है, तो दास भाव में प्रार्थना करने लगी। और खेलते खेलते कृष्ण जी जब थक जाते थे वन में, तो बलराम जी उनके चरण दबाते थे, सर दबाते थे, तो दास भाव में भी बलराम कई बार कृष्ण की सेवा करते। सखा तो थे ही, दोनों मित्र बन के जाते थे और सखा भाव में तो बलराम जी थे ही, लेकिन वात्सल्य भाव उनका ये था कि बड़े थे, हमेशा कृष्ण की रक्षा के लिए खड़े होते थे। और जब श्रृंगार कृष्ण को माँ यशोदा कराती थी तो बलराम जी खड़े होकर उसके अंदर सामान लगाते थे वात्सल्य भाव में। लेकिन माधुर्य भाव में कृष्ण का बलराम जी कैसे माधुर्य भाव में प्रवेश करेंगे? राधा रानी की बहन अनंग मंजरी, वो बलराम का विस्तार है। बलराम अपने आप का एक एक्सपेंशन करता है अनंग मंजरी के रूप में, जो राधा रानी की बहन है, और वो मंजरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से बलराम जी सेवा करते हैं। तो सेव्य भगवान है, हमको सेवा आते हैं तब हमको पता लगता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह के गए कि मेरे भक्त बनो, लेकिन श्री कृष्ण बैठे गोलोक में देख रहे हैं कि मैं बोल के तो आया हूं भक्त बनो, लेकिन लोग भक्त नहीं बन रहे, तो कौन सिखाएगा उनको भक्त कैसे बनना चाहिए? तो मुझे ही जाके सिखाना चाहिए कि भक्त कैसे होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी को अपने में मिलाकर चैतन्य महाप्रभु बन के आए भक्त के रूप में, ये सिखाने के भक्त कैसे होना चाहिए। तो भक्ति सिखाने के लिए भगवान आए, तो सेवा सिखाने के लिए बलराम जी का अवतार है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा सदा कैसे की जाए, इसलिए बलराम जी का प्रकट्य। वैसे बलराम जी कृष्ण के अवतार में बड़े भाई के रूप में आए हैं, राम अवतार में छोटे लक्ष्मण के रूप में थे। तो उस लीला में कभी देखेंगे कि एक बार ये प्रश्न चला कि रावण के ऊपर राम जी ने विजय प्राप्त की है, तो ऋषियों के अंदर बैठे हुए अगस्त ऋषि ने उठ के कहा कि ये तो ठीक है, विजय तो प्राप्त राम जी ने की है, वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन लक्ष्मण न होता तो ये विजय नहीं हो सकती थी। बोला क्यों? बोला मेघनाथ को और कोई नहीं मार सकता था, मेघनाथ के मारे बगैर रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी। और मेघनाथ को कौन मार सकता था? जिसने 14 साल नींद नहीं की हो, 14 साल जो सोया नहीं हो, 14 साल जिसने खाया नहीं हो, और 14 साल जो नष्ट की ब्रह्मचारी रहा हो। इसलिए 14 साल का ही वनवास है, 13-12 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, 14 ही क्यों कहा? क्योंकि 14 साल तक जो बगैर खाए बगैर सोए नैष्टिक ब्रह्मचारी का पालन करेगा, वही केवल मेघनाथ का वध कर सकता है। दूसरी रात वनवास में जाने की है, अयोध्या से निकले हैं सीताराम लक्ष्मण और सुमंत्र उनके साथ है जो रथ में ले गया है, और श्रृंगेरपुर जहां निषाद राज का राज था अयोध्या की सीमा के बाद, श्रृंगेरपुर में रात को जब रह रहे हैं, तो रोज के नियम के अनुसार लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। और ये नियम राम जी का था कि कुछ समय के बाद लक्ष्मण को कहते थे आप जाके अब भैया सो जाओ। लेकिन आज रात को राम जी ने ये नहीं कहा लक्ष्मण को। तो क्या राम जी चल के आए थे, पैदल थक गए थे, नींद आ गई इसलिए नहीं कहा? नहीं, भगवान को तो पहले ही, अगर हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, तो विश्वामित्र जी ने पहले दिन ही ले जाके अयोध्या से सरयू के तट पे आचमन करा के उसको बल विद्या, बल नाम की एक विद्या दी थी। कहा कि मैं आपको दो विद्याएं देता हूं जिसमें कभी आपको थकावट नहीं होगी, आप कभी भी थकेंगे नहीं, युद्ध में है आपके शत्रु के सामने, आपको कभी थकावट नहीं होगी। उसको बोलते बला और अबला नाम की दो विद्याएं पहले दिन दी थी, तो भगवान राम को थकावट तो नहीं हो सकती। तो फिर आंखें क्यों बंद कर दी और क्यों नहीं कहा लक्ष्मण को कि सो जाओ? तब लिखा है कि राम जी आज बहुत अंदर में दुखी हो रहे थे कि आज से 14 साल तक लक्ष्मण को सोना नहीं है। इसके लिए सोने का कैसे कहूं कि जाके सो, अब तो इसका सोना 14 साल के लिए बंद है। फिर भी अगस्त को राम जी ने पूछा कि मैं रोज जो फल लक्ष्मण लाता था, सीता उन फलों को भगवान जैसे भोग लगा, जो भी नियम था, फिर मैं रोज लक्ष्मण को देता था, तो लक्ष्मण फल नहीं खाता था क्या? तो अगस्त ने कहा आप जो फल लक्ष्मण को देते थे, लक्ष्मण वापस वन को दे देता था जहां से फल आते थे, लेकिन एक दिन भी नहीं खाया। बोला नैष्ठिक की ब्रह्मचारी तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखता है, लेकिन ये सीता तो मेरे साथ थी, तो लक्ष्मण जी नैष्ठिक की ब्रह्मचारी कैसे हुए? राम जी ऐसे पूछ रहे। तो बोला लक्ष्मण ने कभी सीता जी के मुख को नहीं देखा, हमेशा सीता जी के चरणों को देखते, और इस बात की पुष्टि लक्ष्मण जी किष्कंधा कांड में करते हैं। जब सुग्रीव ने कहा कि कोई आकाश मार्ग से किसी स्त्री को ले जा रहा था और हमको देखकर उसने वस्त्र आभूषण में कुछ आभूषण वस्त्र में बांध के फेंके, राम जी ने कहा जल्दी लाओ। और जब राम जी के पास आभूषण आए तो राम ने कहा लक्ष्मण तुम पहचानो? तो लक्ष्मण ने कहा चरणों के जो पायल है इसको मैं जानता हूं, ये जानकी की है मां की, लेकिन ये कानों के कुंडल मैं नहीं जानता, क्योंकि कभी मैंने उनके मुंह की ओर देखा नहीं, मैं तो केवल चरणों में प्रणाम किया है। तो राम लक्ष्मण जी अपने मुख से वहां कहते हैं कि मैंने कभी सीता जी का मुख का तरफ देखा भी नहीं। और तब राम जी ने कहा अब अगले अवतार में आप मेरे बड़े भाई के रूप में आना, और अगस्त मुनि के सामने ऐसे कहा। और प्राचीन प्रचलित कथा ये है कि कई बार छोटे भाई के कारण लक्ष्मण को ऐसे काम करने पड़े जो वो नहीं करना चाहता। सीता को जाके छोड़ के आए वाल्मीकि आश्रम में, ये लक्ष्मण ने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख के काम किया, नहीं करना चाह रहा था। और सीता के लिए अग्नि का कुंड बनाए जिसमें सीता प्रवेश करेगी रावण के वध के बाद लंका में, ये करने में बहुत बड़ा लक्ष्मण को दुख हो रहा था, लेकिन छोटा भाई था, आज्ञा का पालन करना था। अब बोला मैं छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बन के जाऊंगा, ये मेरे से काम नहीं होते हैं जो आप कराते। लेकिन वो भी एक कारण है, इसलिए इस बार कृष्ण से पहले बलराम जी आए। लेकिन बलराम जी आए पहले आप, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं ये सुनो। तो आप क्या करो, तो आप ऐसे करो इसको यहां से ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। तो अभी तो देवी देख रही है योग माया। तब भगवान कहते हैं तथा अहम अंश भागे न देवक्याम पुत्राणाम शुभे। हे शुभ, हे मंगलकारी देवी, मैं स्वयं अपने सारे अंशों के साथ जितने भी पहले विष्णु अवतार हुए वो सब अपने आप में समा लूंगा और मैं देवकी के पुत्र के रूप में आऊंगा। प्रापस्यामि त्वम यशोदायाम, और मैं देखना चाहता हूं कि तुम यशोदा के घर में नंद पत्नियाम, यशोदा कौन सी? नंद पत्नी भविष्यसी, और तुम नंद की बेटी के रूप में जाकर जन्म लो। अनुजा, मेरी छोटी बहन के रूप में तुम यशोदा की पुत्री बनना। छोटी बहन एक शब्द और दो शब्दों के ऊपर बहुत बड़ा रहस्य है कि कृष्ण वसुदेव के घर में पैदा हुआ था, तो फिर छोटा भाई कैसे, छोटी बहन कैसे होगी योग माया, अगर वो यशोदा की पुत्री है तो छोटी बहन कैसे होगी। और ऐसे भी लिखा है श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार। जात कर्म का मतलब जो मां के साथ बच्चे का जन्म के समय जो एम्बलाइकल कार्ड होता है उसको काटने को जात कर्म संस्कार कहते हैं, कि नंद ने जात कर्म संस्कार कृष्ण का किया। तो क्या वसुदेव वहां से लाया था, तो क्या वो पाइप नाले के साथ तो नहीं लाया होगा ना। इसका मतलब यशोदा ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। बेटी को वसुदेव ले गया और उस बेटे के अंदर वसुदेव जो लाया था कृष्ण, वो उसमें प्रवेश होकर समा गया। वसुदेव कृष्ण अवतार है, विष्णु नाम लिखा है, लेकिन यशोदा नंदन कृष्ण स्वयं भगवान है। जो अवतार है वो यशोदा नंदन कृष्ण है, और जो अवतार है वो देवकी नंदन कृष्ण है। जो यशोदा नंदन कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कृष्ण गोप रूप गोप वेशधारी है, वो गोप वेश में रहते हैं। इसलिए कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। अक्रूर घाट की सीमा के बाद जो अक्रूर कृष्ण बलराम ले गए, वो एक वसुदेव कृष्ण था और एक अनंत शेष था, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान ब्रज में ही रहते। इसलिए चेतना महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत ले जाना, कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं अलग लिखना और द्वारका की लीलाएं अलग लिखना। ब्रजेश ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण एक ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों के भाव में बहुत बड़ा अंतर है। और सत्यभामा ने प्रकट होकर सत्यभामापुर में रूप गोस्वामी को कहा, जो आप किताब लिखने जा रहे हो देव द्वारका और वृंदावन की लीला साथ मत लिखना। और इसलिए रूप गोस्वामी ने दो ड्रामे लिखे, ललित माधव में राधा कृष्ण का वृंदावन का लीला लिखा है और विगत माधव में द्वारका लीला लिखी है। तो श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि तुम यशोदा के घर में पैदा होना, और फिर आगे एक बात कहते हैं, वो पढ़ के आज के सत्संग को वो घर उसके बाद भगवान कहते हैं, और ये काम करने के कारण देवी तुम्हारी पूजा होगी सारे भारतवर्ष में, और बहुत से नामों का वर्णन किया है, जगहों जगहों पे होगी। और फिर कहते हैं आप तो देवी ने कहा इतना बड़ा बलराम जी को मैं देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे ले जाऊं। तब भगवान कहते हैं शुभे मैं आपको ये शक्ति देता हूं, आप ये कार्य कर लोगी, आप कर सकती हो। और फिर भगवान ने तीन नाम देवी को बता दिए, क्योंकि आपको उसको खींचकर वहां ले जाओगी, इसके लिए उसका नाम संकर्षण होगा। गर्भ संकर्षणा त्वम वही प्राहु संकर्षणम भुवि, तो लोग उसको संकर्षण कहेंगे क्योंकि उसके गर्भ को तुम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही हो आकर्षण करके। फिर भगवान कहते रामेति लोक रमणात, और वो ब्रज को इतना आनंद देगा, ब्रज जन रंजन ब्रजवासियों को इतना आनंद देगा, इसलिए उसका नाम राम होगा। बलभद्रम बल उच्छ्रियात, और उसके समान बल में कोई नहीं होगा, इसके लिए उसका नाम बलभद्र होगा। राधा गोविंद महाराज इस श्लोक के ऊपर कथा करते हुए कभी कहते थे कि भगवान ने सोचा श्री कृष्ण ने कि बलराम मुझसे पहले जा रहा है, तो जैसे लोग प्रायः हमसे कहते हैं राम का अवतार त्रेता युग में हुआ, कृष्ण द्वापर में आया तो राम बड़े हुए कृष्ण छोटे हुए, ऐसे लोग प्रायः पूछते हैं, जो पहले आया वो बड़ा है। तो यहाँ सावधानी से भगवान श्री कृष्ण बलराम के अवतार से पहले, वो भले पहले आ रहा है, उसका नामकरण करके उसको दीक्षा देके भेज रहे हैं कि ये बड़ा नहीं है, ये मेरा सेवक है। उसको संकृष्ण नाम दिया, राम नाम दिया, बलराम नाम दिया, पहले से बोला इन नामों से इसको ये जाना जाएगा। तो उनके जन्म से पहले ही भगवान ने उसके नाम देके ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़ा भाई मेरा है, मेरे लेकिन है मेरा अंश और मेरी सेवा के लिए है। तो ऐसे फिर यहां कंस की बदनामी हुई कि सातवां गर्भ देवकी का गिर गया, कंस ने गिराया होगा, ये बदमाश है। सब लोगों ने कंस की निंदा की और देवकी बेचारी दुख में थी, पहले शोक था कि भगवान आया, अब कुछ भी नहीं है। और वहां रोहिणी गर्भवती थी और वो रात को देखती है, रोहिणी और देवकी दोनों के ऊपर योग माया ने अपना ऐसा प्रभाव डाला, दोनों को पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। रोहिणी ने देखा मेरा गर्भ कोई गिरा रहा है, बेचारी भयभीत हुई। तो देवी ने प्रकट होकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में मैं संकर्षण को तुम्हारे नित्य पुत्र को स्थापित करने जा रहा हूं। और पांच दिन के बाद, उस इस स्थिति के पांच दिन के बाद नंद गोकुल में बलराम जी का जन्म हुआ। और नंद बाबा ने बड़ी उदारता से गायों का दान किया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया, बलराम जी के आविर्भाव के ऊपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया नंद बाबा ने। वैसे नंद और वसुदेव दोनों कजन ब्रादर हैं, इन दोनों का पिता परजन्य गो, उसकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी वैश थी, उससे पांच भाई पैदा हुए, नंद उपनंद सुनंद आदि, और दूसरी पत्नी क्षत्रि थी जिससे वसुदेव आदि पैदा हुए। तो जो इनका दादा था वो एक था, तो ये आपस में कजन ब्रादर थे शास्त्र की दृष्टि से। तो वहां बलराम जी का बड़ा उत्सव मनाया गया। बहुत पुरानी बात मेरी याद में आती है, सुनी हुई है कि बलराम जी ने जन्म से आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ और आंखें खोल के पहले श्री कृष्ण को ही देखा। ऐसे राधा के लिए भी ऐसे कहते हैं, लेकिन बलराम जी ने भी कुछ न बोला, नहीं कुछ आंखें भी नहीं खोली जब तक श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब तक ऐसे ही चुप भी रहे और आंखें भी नहीं खोली थी। तो कल बलराम जी की पूर्णिमा है और हम उसको रक्षाबंधन कहते हैं। असल में रक्षा कौन करेगा, जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो रक्षा करेगा ना। वो बहन बिचारी क्या रक्षा करेगी, रस्सी बांधेगी तो वो तो 50-100 रुपया 200-500 रुपया लेगी, वो रक्षा कहाँ करेगी। तो असल में रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता था, बलराम जी बलशाली है और उसकी उपासना करने के बाद, पूजा करने के बाद ब्राह्मण लोग बलराम पूर्णिमा मना के बलराम जी के पूजा के बाद वहां से एक मंत्र अभिमंत्रित करके बलराम के बल से धागा लेकर अपने शिष्यों को बांधते थे, राजा महाराजाओं को ब्राह्मण बांधते थे कि तुम्हारी रक्षा होगी, बलराम तुम्हारी रक्षा करेगा जो बलभद्र है। फिर आस्ते आस्ते समाज में ये चीजें बदलती गई। कुछ बहुत रिसेंट पास्ट में मुस्लिम काल में ये बहन भाई को राखी बांधती है, ये बहुत बाद में आया, पहले ये नहीं था, ये तो बाद में आया। लेकिन ओरिजिनली बलराम जी के रक्षा की रक्षा ब्राह्मणों के द्वारा, बलराम जी रक्षक है, वही हमारी आध्यात्मिक रक्षा करते हैं, वही गुरु को शक्ति देते हैं शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग में सेवा में लगाने के लिए। गुरु तत्व है, वही रक्षक है। तो रक्षा बलराम जी के द्वारा हम सबकी होती है। तो वो इस दिन रक्षाबंधन भी इसलिए कहते हैं कि यदुवंशियों की रक्षा के लिए देवी को बलराम जी, देवी के द्वारा बलराम जी को भगवान ने यदुवंश के अंदर स्थापित किया कि उनका रक्षक है। और यदुवंश की रक्षा की बलराम जी ने, कितनी जगहों पे रक्षा की है, पूरे विदर्भ देश में शिशुपाल और जरासंध की सेना के साथ अकेला बलराम अकेला लड़ा। कृष्ण तो रुक्मणी को लेकर चला गया, अकेला बलराम उधर लड़ता रहा। बलराम जी 17 बार जरासंध की सेना के साथ लड़ा और हल के साथ गले में डाल के जरासंध को पकड़ के लाता था, बोला मूसल दे के मारूं कन्हैया। कृष्ण बोलता नहीं नहीं, हमारे मामा का ससुर है, इसको मत मारो। तो बलराम जी कहता मामा को मार दिया, ससुर को नहीं मारो, क्या बात है। तो कन्हैया कहता देखो हम कहां कहां बदमाशों को ढूंढने के लिए जाएंगे, इसको छोड़ दो, कटे करके यहां लाएगा फिर हम मारेंगे। तो 17 बार में जितने भी बदमाश थे सबको वो लाया और कृष्ण बलराम ने उनको मारा। तो बलराम जी के द्वारा रक्षा होती है। कल रक्षाबंधन है, आप बलराम पूर्णिमा के जाइए, बलराम जी का दर्शन कीजिए और बलराम जी से, पंडित जी से रक्षा का धागा बलराम के चरणों से लेके बांधिए, तो आपकी